जया कुंज बिहारी राधा माधव जया कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक संख्या 22। मेरे पीछे बोलिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, मैंने सोचा कोई है ही नहीं यहाँ, इतने लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है, है? सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, मासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कोई बोलेंगे,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि।
अच्छा, शब्दार्थ बोलिए, समय ज्यादा लग जाएगा अगर आप लोग दोहराएंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। वासांसि वस्त्रों को, तो बिना माइक के अच्छा है या माइक के? माइक में ठीक है, पीछे सुनाई पड़ रहा है, हैं? वस्त्रों को, पीछे बोली, वस्त्रों को जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवानि नए वस्त्र गृहणाति ग्रहण करता है नरः मनुष्य अपराणी अन्य तथा उसी प्रकार शरीराणी शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानी वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानी भिन्न संयाति स्वीकार करता है नवानी नये देही देहधारी आत्मा। अनुवाद मेरे पीछे बोले, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो श्लोक बहुत सरल है। हरि बोल, हरि बोल, आवाज, हरि बोल। तो पहले तो आवाज ठीक थी ना। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी ठीक है आवाज नहीं है? कितने लोगों को लग रहा है ठीक है? कितने लोगों को आवाज ठीक लग रही है? हाथ उठाइए। फिर तो आवाज ही नहीं जाएगी। हरे कृष्णा दूर कर दिया तो फिर आवाज थोड़ी जाएगी। हरे कृष्णा दूर करेंगे तो फिर आवाज नहीं जाएगी ना। हरे कृष्णा, अभी कैसी आवाज है? सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? नहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है? नहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है। वो कह रहे सुनाई पड़ रहा है तो आप कह रहे आगे आ जाओ। अगर सुनाई पड़ रहा है तो ठीक है, सबको सुनाई पड़ रहा है। तो ये श्लोक बहुत सरल है और बहुत प्रचलित है। आप लोगों में से कई लोगों को ये श्लोक याद होगा। वासान से जीर्णानी, कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। अरे मैंने सोचा था कि बहुत लोगों को याद होगा। वासान से जीर्णानी, वासान से जीर्णानी यथा विहाय। वासांसी का मतलब है वस्त्रों को, जीर्णानी माने पुराने। यथा विहाय, जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवानी ग्रहणाती, नए वस्त्रों को ग्रहण करता है नरो अपराणी, मनुष्य दूसरे पुराने वस्त्रों को छोड़कर जिस प्रकार मनुष्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी, उसी प्रकार से पुराने शरीरों को त्याग करके अन्य अन्य संयाति नवानी देही, देही यानी आत्मा अन्य शरीरों में जाता है। बहुत सरल है ना, भगवान ने बहुत सरलता से इस बात को बताया। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारा अवस्था और फिर तरुणा अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2:13 की जा चुकी है। तो एक बात समझना है, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, अभी जप नहीं करना चाहिए आपको है? हाँ, अगर जप करोगे तो फिर इसमें मन एकाग्र नहीं होगा, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, पूछे थे कि 13वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जिस प्रकार से शरीर में, जिस प्रकार से इस शरीर में बचपन की अवस्था होती है, फिर जवानी की अवस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार से अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान ने ये बात बताई थी। क्या बताया था, जैसे इस शरीर में कुमारावस्था, फिर जवानी की अवस्था, फिर बुढ़ापे की अवस्था आती है, तो शरीर बदलता है ना, पूरा पूरा का पूरा शरीर बदल गया। बचपन का शरीर 20 साल पहले आपका जो था है ना, वो बिल्कुल नहीं है, पूरा बदल गया। और अभी जो शरीर है 20 साल के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, बिल्कुल बदल दूसरा शरीर होगा, है ना। तो जिस प्रकार से जीवन काल में भी आत्मा नहीं बदलता, आप कहते हैं मैं वही हूं, अब वही क्या है, सब कुछ बदल गया, पूरा का पूरा शरीर बदल गया, और आप क्या कहते हैं मैं वही हूं। 20 साल पुराना आपका फोटो आप देखते हैं तो कहते हैं मैं ये हूं, तो वो शरीर तो बिल्कुल दूसरा है, अभी आपका शरीर बिल्कुल दूसरा है और आप कहते हैं मैं वही हूं, मैं यही हूं, है ना। तो वो क्या चीज है जो नहीं बदला, वो आप हैं। तो जीवात्मा के जीवन काल में इस शरीर में जैसे परिवर्तन होते हैं, बचपन की अवस्था का शरीर अलग, जवानी की अवस्था का शरीर अलग, वृद्धावस्था का शरीर अलग, उसी प्रकार से अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। धीरस तत्र न मोहयति, जो धीर पुरुष है इसमें भ्रमित नहीं होता। तो भगवान ने बड़ी सरलता से बताया, लेकिन एक अंतर है इसमें, एक अंतर है। क्या अंतर है कि जब बचपन से, बचपन का जो शरीर है ये बदल करके जवान शरीर बनता है, उस समय जीव शरीर को नहीं छोड़ता, शरीर को जीव छोड़ता नहीं है, बचपन का जो शरीर है वही बदल करके जवानी का शरीर बन जाता है, लेकिन जीव हाँ शरीर में ही रहता है और शरीर बदलता है, हैं। उसी प्रकार से जवानी का जो शरीर होता है तो वो भी बदल करके बुढ़ापे का शरीर बन जाता है, लेकिन जीव तो शरीर नहीं छोड़ता, लेकिन अंत में बुढ़ापे के बाद जीव शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर हुआ, ये थोड़ा अंतर हुआ ना। तो इस इसकी व्याख्या जो है, इसकी तुलना भगवान आज के श्लोक से कर रहे हैं वस्त्र के द्वारा, वस्त्र परिवर्तन। आप सुन रहे, जो बचपन का शरीर था और वही आप धारण किए हैं, और वही शरीर बदल करके जवानी का शरीर बन जाता है, है ना। लेकिन बुढ़ापे का शरीर जो है आप छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, तो इसमें तो पूरा का पूरा शरीर आपने छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर ग्रहण किया, है ना। तो इसका जो उदाहरण है वो पूरा पूरा फिट नहीं बैठ रहा है इससे, बचपन के शरीर के और जवानी के शरीर में जो परिवर्तन है, तो उसके लिए भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं जो पूरा फिट बैठ रहा है। क्या कि वस्त्र जो आपके पुराने हो जाते हैं तो इनको आप रिजेक्ट कर देते हैं और आप नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार से बुढ़ापे का जो शरीर है, बुढ़ापे का शरीर आप छोड़ करके नया शरीर प्राप्त करते हैं, ये जो है उदाहरण बहुत फिट हो रहा है ना। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। परमात्मा कैसे हैं जीव के, मित्र की तरह, मित्र की तरह। जीव भगवान को छोड़कर के इस भौतिक जगत में सुख भोगने की आशा करता है, तो भगवान परमात्मा के रूप में जीव के मित्र बन जाते हैं। और परमात्मा जीव की इच्छाओं में सहयोग देते हैं। जीव की क्या इच्छा रही इस जीवन काल में, तो परमात्मा उनको नोट करते हैं और उसी के अनुसार दूसरा शरीर प्रदान करते हैं परमात्मा, है ना। तो ये परमात्मा की कृपा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मुंडक तथा श्वेतासुतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं। किस दृश्य से? एक दृश्य से समानता है जीवात्मा और परमात्मा में, और वो क्या है कि दोनों नित्य हैं और शरीर रूपी वृक्ष में दोनों बैठे हुए हैं, और शरीर के नष्ट होने से दोनों में से कोई नष्ट नहीं होता। इस दृष्टि से दोनों में समान है। आगे इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। जो परमात्मा है, आवाज साफ आ रही है? आ रही। जो परमात्मा है वो जीवात्मा के साथ में केवल साक्षी के रूप में है, उनकी कोई रुचि नहीं है। जीवात्मा की जो रुचियां हैं वो रुचि परमात्मा की बिल्कुल नहीं है, लेकिन जीवात्मा के साथ परमात्मा मित्र की तरह है, साक्षी की तरह है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण में जाते हैं, कि वहीं परतंत्र पक्षी दूसरे तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4:7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशिया सोचते महिमानः जुष्टम यदा पश्चत्यम निमेषम अस्य महिमानमिति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहे हैं। इस प्रकार वे कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वे अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करें, अपितु उन्हें इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भीष्म द्रोण के लिए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पुराने हैं और वो शरीर त्याग करके क्या प्राप्त करेंगे? नया शरीर प्राप्त करेंगे। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है? और प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, इस विषय में प्रकाश डाल रहे हैं कि शोक करने की बात नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपनी इच्छा से ही पुराने कपड़े को त्याग देते हैं क्योंकि जीर्ण हो गया है, और जब नया शरीर आपका निश्चित हो जाता है तब आप पुराने शरीर को छोड़ते हैं। इस श्लोक पर श्री भगवान ने कहा नामक पुस्तक में हमने जो व्याख्या लिखी है उसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इतना समय नहीं है कि सभी बातें पढ़ के सुनाई जाएं, लेकिन इस पुस्तक में बहुत सी बातें हैं, उनमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें एक बात यह है कि भगवान ने शरीर की तुलना किससे की है? शरीर की तुलना किससे की है? वस्त्र से। शरीर की तुलना की है वस्त्र से। तो सुनिए बड़े ध्यान से, कोई सामान्य मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का तभी त्याग करता है जब उसके हाथ में नवीन वस्त्र आ जाते हैं। उसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि जीवात्मा का जब नया देह निश्चित हो जाता है तभी वो अपना शरीर छोड़ता है। परंतु यहाँ पर एक बात समझनी होगी, कोई सामान्य व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार नए वस्त्र बनवाता है। सुना है सब लोग? कोई सामान्य व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार नए वस्त्र बनवाता है और जब ये नए वस्त्र उसे प्राप्त हो जाते हैं तभी वो पुराने वस्त्र त्यागता है। परंतु यहाँ पर जीवात्मा के लिए तो ऐसा नहीं है। कोई सामान्य जीव अपना अगला शरीर अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित नहीं कर सकता। कपड़ा तो आप पहने हैं है? तो पुराना जब कपड़ा होता है तो पहले से आप कपड़ा सिलवाते हैं, है ना? और जब सिला कपड़ा आ गया आपके पास तब आप पुराने कपड़े को त्यागते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, है ना? लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है, है? कपड़ा तो आप खुद ही बनवाते हैं ना, है ना? लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। कोई सामान्य जीव अपना अगला शरीर कोई सामान्य जीव अपना अगला शरीर अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित नहीं कर सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जीवात्मा का अगला शरीर कौन निश्चित करता है? भगवान ने एक बात बताई कि जैसे आप पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। लेकिन एक अंतर अभी हम समझ रहे हैं, है ना? कि आप पुराने वस्त्र तभी त्यागते हैं जब आपने अपनी पसंद का नया वस्त्र बनवा लिया और बन करके तैयार हो गया, आपके पास आ गया तब, है ना? लेकिन जीव अपनी इच्छा के अनुसार अगला शरीर निश्चित नहीं कर सकता, है ना? तो फिर प्रश्न उठता है कि जीवात्मा का अगला शरीर कौन निश्चित करता है? कर्म। कर्म के अनुसार निश्चित करता है? नहीं, कोई करता है ना, कोई तो करता है। हाँ, प्रत्येक जीवात्मा के साथ श्री कृष्ण ने परमात्मा के रूप में अपना विस्तार किया है। ये परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के साथ उसके मित्र के समान अथवा पिता के समान कार्य करते हैं, मित्र हैं या पिता हैं। ये परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कर्मों और उसकी इच्छाओं को नोट करते रहते हैं और उसके शरीर छोड़ने के पूर्व ही उसका अगला शरीर निश्चित कर देते हैं, परमात्मा निश्चित करते हैं। तो यहाँ पर एक अंतर यही है कि मनुष्य अपनी पसंद से शरीर वस्त्र बनवाता है और जब मिल जाता है वस्त्र तब पुराना वस्त्र छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर अंतर है कि जीव खुद चुनाव नहीं कर सकता कि उसे अगला शरीर कौन सा चाहिए, है ना, परमात्मा उसका चुनाव करते हैं और परमात्मा अगला शरीर निश्चित करते हैं उसके कर्म और इच्छाओं के अनुसार। उसके कर्म कैसे हैं, उसकी इच्छाएं कैसी हैं। हम कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृति एक दर्जी के समान है जो परमात्मा के आदेश अनुसार जीवात्मा के लिए नवीन देह रूपी वस्त्र सिलती है। परमात्मा जीवात्मा के पिता हैं, जैसे पिता जो है अपने बच्चे के लिए दर्जी से वस्त्र सिलवाता है, उसी प्रकार से परमात्मा जीवात्मा के लिए भौतिक प्रकृति से वस्त्र सिलवाते हैं। बहुत अच्छी तुलना है, जैसे पिता जो है ऑर्डर देता है दर्जी को, है कि देखो भाई इसकी नाप के अनुसार कपड़ा बनना चाहिए, उसी प्रकार से भगवान ऑर्डर देते हैं किसको, भौतिक प्रकृति को। और ऑर्डर कैसे देते हैं, इस जीव के कर्म के अनुसार इसकी इच्छाओं के अनुसार शरीर बनाओ। भौतिक प्रकृति दर्जी के समान है और परमात्मा पिता के समान है, तो ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर जीवात्मा एक बच्चे के समान है तथा परमात्मा उसके पिता के समान है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए नए वस्त्रों का प्रबंध करता है, उसी प्रकार परमात्मा जीव के लिए नए शरीर की व्यवस्था करते हैं। तो इसमें बहुत सी बातें हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें समझने लायक हैं। मैंने अपने मोबाइल को बंद कर दिया है, आपके पास जिनके पास मोबाइल है मोबाइल को बंद कर दीजिए। अब सुनिए, देह की चिकित्सा वस्त्र में टांका लगाने के समान है। जिस प्रकार जब किसी व्यक्ति का वस्त्र कभी कट जाता है या फट जाता है तो उस व्यक्ति को उस वस्त्र को धारण करने में कष्ट या असुविधा का अनुभव होता है, उसी प्रकार जीवात्मा का शरीर जब रोग ग्रस्त हो जाता है या कभी किसी स्थान पर कट जाता है तो जीवात्मा को उस शरीर को धारण करने में कष्ट का अनुभव होता है। और जिस प्रकार कटे या फटे वस्त्र को व्यक्ति किसी दर्जी से सिलवाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने रोगग्रस्त या क्षत विक्षत शरीर की चिकित्सा किसी चिकित्सक से करवाता है। आप समझ रहे हैं, तो शरीर वस्त्र के समान है, तो इसका एक दर्जी तो भौतिक प्रकृति है जो पूरे के पूरा शरीर बनाती है, है? एक दर्जी वो होता है जो पूरा का पूरा कपड़ा सिलता है, और दूसरा दर्जी क्या होता है, पूरा कपड़ा नहीं सिलता, हाँ कहीं कट गया फट गया उसकी सिलाई करता है, टांका लगाता है, है ना। आप सुन रहे, तो शरीर रूपी वस्त्र जो आपको मिला है इसमें एक दर्जी ऐसा है जिसने पूरा का पूरा वस्त्र बनाया, वो दर्जी कौन है, भौतिक प्रकृति। और जीवात्मा बच्चा है तो बच्चा खुद तो बनवाता नहीं अपना कपड़ा, अपने उसके पिता ही बनवाते हैं, पिता कौन है, परमात्मा है, है? और ऑर्डर देते हैं दर्जी को, भौतिक प्रकृति को ऑर्डर देते हैं कैसा ऑर्डर देते हैं, मैं अध्यक्ष प्रकृति सोते सजलाता, मेरी अध्यक्षता में तो मेरे ऑर्डर में भौतिक प्रकृति चर चर शरीरों का निर्माण करती है। तो भौतिक प्रकृति दर्जी है, लगातार कपड़े बनाती है और ऑर्डर परमात्मा से मिलता है, हैं? और परमात्मा क्या कहते हैं, देखो इस बच्चे के लिए ऐसा वस्त्र बनना चाहिए, इस वस्त्र के ऐसा वस्त्र बनना चाहिए, है ना। चर अचर शरीर, चर और अचर सब प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीर ये भौतिक प्रकृति बनाती है, वो वस्त्र हैं और बड़ी तेजी से काम चल रहा है भौतिक प्रकृति का, हैं? ये बहुत फास्ट है काम हो रहा है, कितने वस्त्र बनते हैं, कितने वस्त्र बनते हैं। तो परमात्मा ने ऑर्डर दिया है भौतिक प्रकृति को कि जिस जीवात्मा की जैसी इच्छा हो, जैसे कर्म हो, उनके अनुसार उनके वस्त्र बनाओ। तो बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, है ना। तो एक दर्जी भौतिक प्रकृति है जो पूरा का पूरा वस्त्र बनाती है, और दूसरा दर्जी डॉक्टर है, चिकित्सक है, जो बीच में, हाँ बीच में कहीं कटा फटा है तो इलाज करते हैं, टांका लगाता है, हैं? कभी दर्जी खुद भी कपड़ा काटता है फिर सिलाई करता है, उसी पर डॉक्टर भी कभी ऑपरेशन करता है, कुछ काटता है, हैं? और फिर सिलाई करता है, है ना। तो ये जो है बहुत बढ़िया उपमा है। आगे हाँ, भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति बना रही है, ये प्रकृति के द्वारा ही ये वस्त्र बन रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति ही बनाती है, चाहे वृक्ष के रूप में, चाहे वृक्ष के रूप में शरीर बन रहा है, वृक्ष का शरीर बन रहा है, तो कैसे सब लोग कहते हैं प्रकृति बना दी, प्रकृति बनाती है, नेचर बनाती है, ये नेचर का ही काम है, है? जैसे बीज डाला आपने, ना आपने सींचा, अंकुरित हुआ बीज और धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, कौन बनाता है, प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति है।
मूर्त रूप क्या,
मूर्त रूप खैर वो अलग बात है, लेकिन भौतिक प्रकृति है, उसका ही काम है, ठीक है ना। मूर्त रूप जो भी हो, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, कोई भी हो उसका मूर्त रूप, लेकिन हाँ उसका जो अमूर्त रूप है वो इस प्रकार से काम कर रहा है भौतिक प्रकृति का, है ना। मनुष्य का शरीर बनता है, है तो माता के गर्भ में जब पुरुष का वीर जाता है, है तो रज और वीर का मिश्रण होता है, फिर कुछ दिनों में वो जो है एक बेर के आकार का रूप धारण करता है, फिर धीरे धीरे एक महीने में सिर बनता है, हैं? दो महीने में हाथ पैर उंगलियां ये बनते हैं, इस तरह से 9 महीने में पूरा शरीर बन जाता है। तो कौन बनाता है, प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति बनाती है, ठीक है ना। और ये भौतिक प्रकृति बनाती है किसके ऑर्डर पर, परमात्मा के ऑर्डर पर, है ना। तो जितने भी जीव हैं ये परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति सबके शरीर बनाती है, है ना। लेकिन दूसरा जो, तो भौतिक प्रकृति दर्जी है लेकिन वो पूरे के पूरे शरीर बनाती है, लेकिन दूसरे दर्जी कौन है, डॉक्टर है। आपका कपड़ा जो है कहीं से फट गया है, कुछ खराब हो गया है, हैं? और कहीं पर मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, तो काटा कुटी करके और सिलाई करके वो जो है उसको ठीक करता है, है ना। तो डॉक्टर जो है ये वो दर्जी है, वो पूरा कपड़ा नहीं बना सकता, कुछ दर्जी होते हैं भाई पूरा कपड़ा नहीं बना सकते, वो कहते हैं हम पूरा कपड़ा नहीं बना सकते, हाँ आपके कुर्ता में कुछ जो है कुछ कट गया है, फट गया है, रफू कर देंगे, कुछ टांका लगा देंगे, कुछ ये कर देंगे, तो ये काम करते हैं। तो डॉक्टर लोग जो है ये काम करते हैं, किसी का शरीर पूरा का पूरा शरीर नहीं बना सकते वो लोग, है ना। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार हम शरीर की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक की तुलना वस्त्र में टांका लगाने वाले दर्जी से कर सकते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों की तुलना वस्त्र में टांका लगाने में उपयोगी विभिन्न प्रकार के धागों से कर सकते हैं। अब जो दर्जी है तो उसके पास धागा भी तो होता है ना, धागा से ही वो टांका लगाता है, रफू करता है। तो धागा क्या है? कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार की दवाइयाँ डॉक्टर जो देता है तो उससे शरीर में जो है वो ठीक होता है, घाव ठीक होता है कुछ है, तो वो धागे की तरह है। कई प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो क्या है? धागे के समान है, है ना। जीवात्मा जिन विभिन्न प्रकार के शरीरों में भ्रमण करता है उनकी कुल संख्या कितनी है? 84 लाख। 84 लाख, तो 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं। और जीवात्मा जो है क्या करता है? कभी ये वस्त्र पहनता है, कभी वो वस्त्र पहनता है, कभी ये वस्त्र पहनता है, है ना। ये मनुष्य शरीर ही जीवात्मा के लिए उपयुक्त वस्त्र है। मनुष्य का शरीर सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जिसमें वो अपने हाथ पैर मस्तिष्क आदि के कार्य ठीक से कर सकता है। अगर वस्त्र ठीक फिट होता है तो आपका हाथ पैर सब काम ठीक से होंगे, है ना। क्योंकि मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र में हाथ पैर और मस्तिष्क आदि अंग ठीक नाप के हैं। आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो उसमें हाथ का, पैर का, ये सब जो है ठीक नाप में आपको वस्त्र मिला है। इस कारण से आपके सभी अंग काम कर रहे हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं। क्यों? कि सही है साइज में वो कपड़ा बना है। परंतु अन्य शरीर जैसे वृक्ष है, जैसे वृक्ष का शरीर है, ये पशु पक्षी आदि ऐसे वस्त्र हैं जिनमें हाथ पैर मस्तिष्क आदि अंग ठीक नाप के ना होने के कारण जीवात्मा इन शरीरों में हाथ पैर मस्तिष्क आदि के कार्य ठीक से नहीं कर सकता। अब आपका हाथ इतना बड़ा है, है? और हाथ कपड़े का जो हाथ है वो बना दिया इतना, तो आप डालते हैं अब परेशानी है? अगर इतना ही है आप डालते हैं तो फंस रहा है ना, आप परेशान होते हैं है? या कभी दो दो पैर हैं आपके और वो आपके पजामे उसने एक पैर बनाया और दोनों पैर जो है उसमें घुसेड़ दिए, अब आप परेशान होंगे, है ना। तो पशु पक्षियों के शरीर कैसे हैं? इसी प्रकार के हैं, उनके सही नाप के नहीं हैं कपड़े। इसलिए पशु पक्षी के शरीर में जीवात्मा हाथ पैर मस्तिष्क आदि के कार्य ठीक से नहीं कर सकता, हाथ पैर मस्तिष्क के कार्य ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीर ऐसे बेढंगे वस्त्र हैं कि अधिक उचित होगा कि उन्हें वस्त्र ना कहा जाए बल्कि बंधन कहा जाए। मनुष्य का शरीर तो वस्त्र है, लेकिन जो पशु पक्षियों के शरीर हैं उनको वस्त्र नहीं कह सकते हैं, बंधन कहेंगे है? अगर वो ऐसा कपड़ा आपको मिल गया उसमें हाथ का जो है कोई निकल ही नहीं रहा, आपका हाथ ही नहीं निकल रहा है बाहर, अब उसी में जो है कपड़े में फंसा रहेगा आपका हाथ, आप हाथ का काम ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पशु पक्षियों के शरीर कैसे होते हैं? ऐसे ही हैं, वो हाथ का काम कर ही नहीं सकते, उन्हें मुंह से खाना पड़ता है, हाथ से कोई चीज पकड़ नहीं सकते, है ना। तो ये बेढंगे वस्त्र हैं। तो मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर क्या है? एक बंधन है। अब वो वस्त्र आपका क्या हो गया? बंधन बन गया, आप बंध गए, अब आपका हाथ ही जो है निकल नहीं रहा है, पैर नहीं निकल रहा है, है ना, जैसे वृक्ष है तो वो देख भी नहीं सकता है ना, जैसे कोई कपड़ा आपको मिल जाए है ना तो इसमें आपकी आंख ही ढक गई, अब क्या करें। तो वृक्ष का शरीर मिला है तो उसमें क्या है वो देख भी नहीं सकता है ना, और पैर ऐसे हो गए हैं कि चल भी नहीं सकता। अगर आपको ऐसा कपड़ा मिल जाए कि पैर ही बाहर नहीं निकल रहा है तो अब कैसे चलेंगे, नहीं चल सकते हैं। तो वृक्षों के शरीर ऐसे होते हैं है ना, कहीं पर हाथ ही बाहर नहीं निकल रहा है ना, पशु पक्षी ऐसे हैं, और कहीं पर जो है हाथ बाहर निकल आया लेकिन आँख ढक दी, आँख का जो है उसमें छेद ही नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे जो वस्त्र हैं ये बंधन के समान है। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की और एक बहुत आश्चर्य की घटना हुई आज। आज मैंने सोचा कि गीता के कौन से श्लोक पर मुझे प्रवचन देना चाहिए, तो मैंने प्रद्युम्न प्रिया से कहा कि कोई श्री भगवान ने कहा वाली किताब निकाल दो। तो मेरी किताब में सात किताबें हैं श्री भगवान ने कहा, तो उन्होंने कोई एक किताब निकाली, ये किताब निकाली। इस किताब में मैंने ऐसे बीच से खोला कि कौन से श्लोक पर प्रवचन देना है, तो ये श्लोक निकला। अब ये श्लोक निकला जिसमें ये बात आई है कि जो डॉक्टर हैं वो दर्जी के समान हैं, और जो ऑपरेशन करते हैं तो उसमें काटते हैं और कुछ जो है सिलाई करते हैं। तो कल ही मेरा ऑपरेशन होने वाला है, कल ही ऑपरेशन होने वाला है मेरे घुटने का, तो वो जो है काटेंगे और जो है उसमें बहुत सामान निकालेंगे, कुछ जो है सामान डालेंगे, फिर सिलाई करेंगे। तो एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई कि कल ही मेरा ऑपरेशन होने वाला है और आज ही जो है एक ऐसा श्लोक निकला है गीता का कि शरीर क्या है, वस्त्र के समान है। हरि बोल। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी।
आत्मा और परमात्मा भौतिक शरीर से बनता है, मतलब आत्मा से भी बनता है, प्रकृति का आत्मा परमात्मा दोनों साथ साथ आते हैं।
आत्मा और परमात्मा साथ साथ रहते हैं, पक्षी दो पक्षी एक वृक्ष में बैठे हैं। तो शरीर की तुलना कभी कभी वृक्ष से की जाती है, और दो पक्षी जो है एक ही घोंसले में अगर रहें तो उसी प्रकार से इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जो हृदय के घोंसले में रहते हैं।
हर शरीर में अलग अलग है, परमात्मा भी अलग अलग है या परमात्मा
एक ही है? अलग अलग जैसे परमात्मा अलग अलग जैसे जीवात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, कि समस्त प्राणियों में वो अविभक्त हैं, बटे हुए नहीं हैं, लेकिन विभक्तम एव च स्थितम, लेकिन विभक्त जैसे स्थित हैं परमात्मा। जो जीवात्मा है वो तो विभक्त है, मैं अलग जीवात्मा हूँ, आप अलग जीवात्मा हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो मेरे साथ में परमात्मा है, आपके साथ में परमात्मा है, अलग अलग जैसे हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपको बोलना है? हाँ पहले कुछ और आज से संबंध। हाँ जीवात्मा को ही अनुभव होता है कष्ट का, क्योंकि जीवात्मा ही चेतन है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रोचते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रोचते, जो पुरुष है तो वही सुख दुख को भोगने में कारण है। तो चेतन जो वस्तु है वही अनुभव करेगा सुख दुख, जो शरीर है वो सुख दुख अनुभव नहीं करेगा। जैसे कपड़ा, कि शरीर कपड़ा है तो फट जाता है तो कपड़े को कुछ सुख दुख का अनुभव थोड़ी होता है, आपको होता है ना कि आपका कपड़ा है। आत्मा काटा नहीं जा सकता, भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो काटा जा सकता है और ना छेदन किया जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आत्मा को आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन कष्ट का अनुभव कौन करता है? आत्मा। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन शरीर की मृत्यु होने से कष्ट का अनुभव कौन करता है? आत्मा। कहीं बंधा हुआ है आत्मा जो है शरीर से बंधा हुआ है, शरीर के बंधन के कारण शरीर का जन्म होता है तो आत्मा को कष्ट होता है, जन्म का कष्ट आत्मा को होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म का कष्ट आत्मा को ही होता है। आत्मा का मरण नहीं होता, ये मरण का कष्ट आत्मा को ही होता है, ठीक है ना। लेकिन एक विधि है जिससे आत्मा को जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं गुणा नेता नतीन देही देह समझ भगवान जन्म मृत्यु जरा दुख खैर में मुक्त अमृतम अश्नुति। इसी शरीर में रहते हुए आत्मा जन्म मरण के कष्ट से छूट जाता है अगर गुणों से अतीत हो जाए। तो तीन गुण हैं भौतिक प्रकृति है, अगर हम तीन गुणों से ऊपर उठ जाएं तो जन्म मरण शरीर का होता भी है तो आत्मा को उससे कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ जी, तीन गुण कौन से, कौन बताएगा? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तो कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है तीन गुण है ना। अच्छा हाँ माता जी आप बोलिए। श्री कृष्ण पुस्तक में भगवान की दिनचर्या, हाँ सुना नहीं पड़ा क्या? तर्पण, हाँ भगवान, भगवान अगर तर्पण करते हैं या श्राद्ध करते हैं तो ये भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, भगवान सामान्य मनुष्य की लीला करते हैं और शिक्षा देते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो उसके जो ऊपर की सब सात पीढ़ियां और नीचे की 14 पीढ़ियां उनका उद्धार हो जाता है। तो ये एक अलग बात है, अगर हम तर्पण करना चाहें, पितरों का श्राद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ना करें तो कोई उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भक्त के जो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तर्पण का मतलब ये होता है कि अगर आपके कोई जो पूर्वज हैं अगर उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई है तो आप तर्पण करते हैं तो उनको उससे कुछ सुख शांति मिलती है। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो भी कभी तर्पण करते हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं होती है तर्पण करने की, लेकिन करते हैं तर्पण, उससे कुछ नुकसान नहीं है, है? मन की संतुष्टि के लिए या जो लोक रीति चली आ रही है उसका पालन करने के लिए, पहले से कुछ ऐसी प्रथा चली आ रही है तो उसका पालन करने के लिए करते हैं। लेकिन वैसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भक्त हैं तो उनकी भक्ति के द्वारा ही उनके जो 21 पीढ़ियां हैं उनका उद्धार हो जाता है। हाँ
क्या तो समाज में देखा जाता है कि लोग भक्ति कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छी भक्ति कर रहे होते हैं, फिर भी लोगों का कहना ये होता है कि पितृदोष का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है।
इसलिए
पितृदोष,
पितृदोष
क्या ऐसी स्थिति में जो पितृ तर्पण न करें, श्राद्ध न करें तो ये दोष से कैसे निवारण होगा?
क्योंकि हमारी स्टेज तो पता नहीं स्थिति अभी शुद्ध भक्ति की है नहीं, पता नहीं वो बंधन अभी लगेगा किस स्टेज में कितना काम करेगा, तो हमारी क्या कैसे तुलना करें।
भक्ति की जो विधि है ये शास्त्र साधु आचार्यों के द्वारा होती है, तो ये हमारा जो संघ है हरे कृष्ण आंदोलन है इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है भक्ति करने का, 10 नाम अपराधों से बचा जाता है। तो हम लोग रोज 10 नाम अपराध बोलते हैं, तो अगर आप अपराधों से बच करके अगर आप नाम लेते हैं तो आपकी बड़ी जल्दी उन्नति होती है और उस उन्नति को आप स्वयं अनुभव करेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे आप भोजन खाते हैं तो आपको अनुभव होता है कि आपकी भूख कितनी मिट गई, मिटती जा रही है, और आगे भी आप जो है पुष्टि का अनुभव करेंगे, भूख भी मिटी है और साथ साथ आपके शरीर में बल भी आ रहा है। तो कोई आपको बताता नहीं, आपको खुद ही पता चलता है कि आपकी भूख मिट गई और आपके शरीर में बल आ रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार और अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं तो भक्ति में हमें वो बल मिलता है कि हमें अनुभव होता है कि हाँ मैं कुछ अनुभव कर रहा हूँ और ये भौतिक संसार कष्टों का है, यहाँ मुझे सुखों की आशा नहीं करनी, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बैठिए बैठिए।
दौरान कहीं भी नहीं, मतलब बिना ब्रेक के अटैक करते आ रहे करते आ रहे करते आ रहे लेकिन भगवान के शुभ भगवान के